நாராயண நாராயண ராமச்சந்திர
तो हम उस बात को बताया कि जो हम सबसे बढ़कर समझते हैं, हमने ये बात कही कि भगवान के स्वरूप का हर वक्त ध्यान रखना चाहिए, चिंतन रखना चाहिए, अवसर लेकर के मरण तक। भगवान का जो स्वरूप है वो साकार हो चाहे निराकार हो, निराकार रूप से तो भगवान सब जगह के बीच के मां परिपूर्ण है, व्यापक है, सच्चिदान घन रूप से सब जगह के मां वे व्यापक है, और वे भगवान निराकार ही साकार रूप से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि जो है निराकार रूप से सब जगह में व्यापक है, और दियाश्राई के बीच के मां भी निराकार रूप से है और घृष्णा से वो प्रकट हो जाती है, सब जगह के मां समान भाव से व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। घन रूप से सब जगह के बीच के मां सदाई से परिपूर्ण है। श्री विष्णु या श्री शिव जो है उसको अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए। और साकार और निराकार एक ही चीज है, इस सिद्धांत को समझ करके भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी समझ के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार माने उस परमात्मा के स्वरूप को हर वक्त याद रखना चाहिए, एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। ये खास बात बताई गई। हमारे कोई भी एक संप्रदाय नहीं कि हम ऐसा करें कि राम की उपासना करनी चाहिए, या ये कहें कि कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, या कहें कि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, या ये कहें कि शिव की उपासना करनी चाहिए, या ये कहें कि भेद उपासना करनी चाहिए, हंग्र ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ऐसा एक प्रकार से नहीं कहते हैं, उत्तम है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के अनुसार या कोई संप्रदाय को नहीं मानता है तो अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को हर वक्त याद रखना चाहिए। साथ के बीच के मां भगवान के नाम का जप भी रहे तो सबसे बढ़कर के है। तो नाम का जप है, वाणी के द्वारा नाम का जप है, या श्वासों के द्वारा नाम का जप है, और मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान, ये दो जो चीज है सभी साधकों के लिए, चाहे कर्म योग के मार्ग में चले, चाहे भक्ति योग के मार्ग में चले, चाहे ज्ञान योग के मार्ग में चले, चाहे अष्टांग योग के मार्ग में चले, प्रकार से नाना हो सकता है, किंतु ये जो है भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान, इस सब में लाभदायक है। नाम का जो जप है, चाहे ओम का जप करिए, चाहे राम या शिव या हरि या नारायण, जो आपकी मर्जी हो, इसके वास्ते कोई भी आपने फर्क नहीं है। इसी प्रकार से स्वरूप के विषय में भगवान का जो अनेक नाम है और भगवान के अनेक स्वरूप हैं, ध्यान जो किया जाता है जिस स्वरूप का, चाहे स्थूल से स्थूल हो या चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो, फल दोनों का एक ही होता है। तो इसलिए अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि से आज तक जो सुना है और समझा है उसी के अनुसार भगवान का लक्ष्य बना कर करके ध्यान करें, चाहे उस निराकार अलक्ष्य अनिर्देश उसका ध्यान करें, आखिर के मां जाकर के एक ही फल होगा। किंतु
एक घंटा
या दो घंटा का समय मिले
तो
विशेष रूप से आपने करना चाहिए, अर्थ और भाव के सहित भगवान का ध्यान करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। नाम का जो जप है उसका अर्थ क्या है कि भगवान का जो स्वरूप है वही उस नाम का अर्थ है, और स्वरूप जो है वो अर्थ है, और भाव क्या है कि ये जो भाव है प्रेम भाव है, निष्काम भाव है, ये भाव है, तो इस प्रकार के भाव से भावित होकर करके कि अर्थपूर्ण भाव के सहित जो नाम का जप किया जाता है वो बड़ा दामी है, उस कोटि का है। भगवान के नाम का जप श्रद्धा भक्ति पूर्वक और निष्काम भाव से निरंतर किया जावे तो उस नाम जप के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है, भगवान के स्वरूप का जो ज्ञान है, ध्यान है, या गीता जी का अर्थ का जो अनुभव है, ये एक प्रकार से उसी श्रेणी की चीज है। इसलिए एक प्रकार से यह बात कही जावे कि भगवत गीता का जो अध्ययन है अर्थ और भाव के सहित और नाम का जो जप आपको बताया तो वास्तव के बीच के मां एक ही चीज है, भगवान की भक्ति के ही सब अंग हैं। इसी प्रकार से भगवान का ध्यान, ध्यान जो है उस समय में भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है उस ध्यान के साथ साथ भगवान के गुणों को और स्वभाव को और भगवान के स्वरूप को याद रखें तो और भी उत्तम बात है। भगवान के नाम के अलावा भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप का अनुभव, स्वरूप जो है जब उनके मां जो गुण है उनका अनुभव और उस भगवान के स्वरूप का तत्व रहस्य का अनुभव होते हुए यदि ध्यान किया जावे तो वो ध्यान और भी अधिक दामी है। साकार के विषय के बीच के मां तो भगवान की जो लीला है वो भी शामिल हो जाती है, उसे की रूप माधुरी भी शामिल हो जाती है, रूप और लावण उसका आकार का और निर्गुण निराकार के विषय के वहां वो निर्विशेष है, उसको हम सत्यचिदानंद रूप कहते हैं। उस सच्चिदानंद शब्दों को सुन करके जो एक भाव पैदा हुआ है उसको लक्ष्य बना करके उसका ध्यान किया जाता है। और सैगुण जो निराकार है और सैगुण जो दिव्य गुणों करके संपन्न माइक गुण नहीं, वे सब गुण चेतन है और माइक सब जो गुण है वो जड़ है। तो जो संसार के मां हम लोगों में जो प्रतीत होते हैं ये सब माइक गुण है, मनुष्यों में और सब के बीच में जो दया प्रतीत होती है, प्रेम प्रतीत होता है, क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता आदि जो बहुत से जो गुण देखने में आते हैं, समझ में आते हैं, ये सात्विक है और सतोगुण होने से माया का ही एक प्रकार से कार्य है। पर भगवान तो गुणों से अतीत है, इसलिए उनके जो गुण हैं वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं। सारी दुनिया के बीच के वहां जो दया का रूप दिखता है, इस सारी दुनिया की दया को हम इकट्ठे कर ले हुए तो उस दया सागर के मुकाबले के मां, दया सागर की दया के मुकाबले के मां सब मिलकर के एक बूंद के समान भी ऐसा नहीं हो सके। उनकी जो दया है वो दिव्य है, चेतन है, और ये संसार के बीच के मां जो दया है या सात्विक गुण से जड़ है, उस दया को आभास मात्र है, उस दया को एक प्रकार से प्रतिबिंब मात्र है। एक तो असली चंद्रमा हो है और एक उसको प्रतिबिंब हो है, तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही है और असली असली है। तो भगवान के भीतर में जो दया है वो असली है और वो चिन्मय है और वो अनंत है, और लोगों के मां जो दया है उस भगवान से ही है, किंतु भगवान को चिलको मात्र है और एक अंश को चिलको सारे ब्रह्मांड के बीच के मां फैले हुए। तो असली जो दया है वो भगवान के मन है। तो वे भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य गुणों करके संपन्न, वो चिन्मय है, और भगवान समझो कि सात्विक गुणों करके संपन्न होकर के जो संसार में लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, वो भी उनका स्वरूप कल्याण के करने वाला, मुक्ति के देने वाला है। तो सबसे बढ़कर के भक्ति के मार्ग के बीच के वहां सबसे बढ़कर जो चीज है वो भगवत प्रेम है। उस भगवत प्रेम को हम भगवान से भी बढ़कर के कह देवे तो इसमें भगवान की निंदा नहीं है बल्कि भगवान की स्तुति है। भगवान से बढ़कर के हम भगवान के प्रेम को कहें, हम ये भी कह दें कि प्रभु हम आपका प्रेम चाहते हैं और प्रेम का आदर हम भगवान से भी अधिक करें, प्रेमी से भी हम प्रेम का अधिक आदर करें, जो हमारे प्रेमी भगवान या हमारे प्रेमास्पद भगवान उससे भी बढ़कर के हम प्रेम का आदर करें, बल्कि यहां तक कह दें कि प्रभु हमको तो आपका अनन प्रेम चाहिए, परम प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के दर्शनों के लिए भी हम प्रार्थना नहीं करें तो इससे भगवान नाराज नहीं होते। इसमें एक रहस्य है कि हम समझते हैं कि हमारे में तो बहुत मामूली प्रेम है और भगवान एक प्रेम के सागर हैं। जो प्रेमी होता है वो बिना मिले रह नहीं सकता, तो अपने में जो प्रेम है, जो थोड़ा जो अपने में प्रेम है, हम तो रह भी सकते हैं किंतु भगवान में जो अपार प्रेम है वह कैसे रहेंगे। जब इस बात का अनुभव हो जावे तो भगवान को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, भगवान बिना आए रह नहीं सकते। बल्कि ये स्वार्थ है कि भगवान आना चाहे फिर भी हम कहें कि प्रभु बस हम तो आपका प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो भगवान को ये मालूम हो जाए कि भी ये तुम्हारे को एक प्रकार से नहीं चाहते, तुम्हारे प्रेम को ही चाहते हैं, तो और भगवान शीघ्र आते हैं, जल्दी आते हैं। हम इस अंत को, इस गुरु को या कहिए इस तत्व को समझ जाएं कि प्रेम का जो तत्व जानने वाला पुरुष है बिना प्रेमी से मिले बिना रह नहीं सकता, उसके वियोग में उसके प्राण सटपट आते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हम भी उसके बिना व्याकुल है और वे भी व्याकुल है, तो होड़ लगाएं एक प्रकार से कि आपने इसमें विजय किसकी हो, तो इसमें कम प्रेम वाले की विजय होगी। तो इसमें हमारा जो प्रेम कम है तो इसमें हमारी विजय होगी, भगवान को इसमें हारना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसका अधिक प्रेम होता है उसमें तड़फन अधिक होती है, वो रह नहीं सकता। तो इस प्रकार के प्रेम को, प्रेम के रहस्य को जो जानता है भगवान इससे ज्यादा खुश होते हैं। एक लौकिक बात है, एक अपनी धर्म पत्नी है और उसका समझो कि एक सदाचारी पति है और दोनों का सांसारिक प्रेम भी है, और समझो कि धार्मिक प्रेम भी है। दाम्पत्य प्रेम उसको कहते हैं कि एक प्रकार से जिसको एक दंपति का प्रेम, दंपति कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के उसको दंपति कहते हैं, और उनका आपसी का जो प्रेम है और दोनों इस बात को जानते हैं कि स्त्री भी जानती है कि पति का मेरे में प्रेम है, पति भी जानता है कि स्त्री का मेरे में प्रेम है, स्त्री भी जानती है पति का मेरे में प्रेम है, दोनों ही आदमी सांसारिक प्रेम रखते हैं, किंतु जब स्त्री इस बात को समझ जाती है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता, तो फिर स्त्री ज्यादा कुशामद नहीं करती, और पुरुष ये जान जाता है कि यह स्त्री मेरे बिना नहीं रह सकती, तो वो पुरुष एक प्रकार से कुशामद नहीं करता। तो एक दूसरे को एक प्रकार से मौन रह करके और उपेक्षा करके एक दूसरे को हरा देता है, उन दोनों के बीच के मां उसकी विजय हो जाती है जो इस रहस्य को समझ जाता है। ये तो लौकिक प्रेम की बात है। इसी प्रकार से पारमार्थिक जो भगवत विषय का जो प्रेम है, उस प्रेम के विषय में हम ऐसा समझ जावे हैं कि भगवान एक समझो कि प्रेम के सागर हैं, प्रेम के पुंज हैं, और वे एक प्रकार से थी हमारे बिना नहीं रह सकेंगे, तो फिर हमको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको एक प्रकार से ये समझ जाना चाहिए, इसका रहस्य समझ जाना चाहिए कि भगवान जितना प्रेम का मूल्य चुकाते हैं ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं चुकाता। ऐसा पुरुष एक भगवान ही है। भगवान इस बात को तो जानते ही हैं कि हमारा प्रेम है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। फिर एक प्रकार से यदि प्रेमी है तो उसको बुलाने की क्या जरूरत है और उसको जलाने की क्या जरूरत है अंतर्यामी को। भगवान अंतर्यामी है, अंतर की जानने वाले हैं। हमारे प्रेम के रहस्य को, तत्व को वे अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर एक प्रकार से थी हम उतावले क्यों हुए कि भगवान जल्दी हमको दर्शन देवे या जल्दी मिले। हमको जो मिलने की गर्ज है उससे ज्यादा उनको गर्ज होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां अपने चुप साध करके रहे तो भी उनको बाध होकर के आना होगा कि यदि हमारे हृदय में प्रेम होगा। और प्रेम नहीं है या कम है तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां हम प्रार्थना कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, उसकी खुशामद कर सकते हैं कि आप दयालु हो, पतित पावन हो, मैं पतित हूँ, मैं दीन हूँ और आप दीन बंधु हो, तो आपको मेरे ऊपर दया करनी चाहिए, मुझको तरसाना नहीं चाहिए, मुझको एक प्रकार से ललचाना नहीं चाहिए। तो ये जो एक प्रकार से भगवान से जो प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, गुणों का गान करना है, ये हम लोगों के जैसे जो कम प्रेमी आदमी होते हैं उनके काम की चीज है। और जिनका भगवान के मां विशेष प्रेम होता है वे भगवान की खुशामद नहीं करते, बल्कि भगवान ही उनकी खुशामद करते हैं। आप देखिए गोपियों के प्रेम के विषय में कहीं कहीं ऐसी भगवान की लीला का वर्णन आता है कि स्वयं भगवान एक प्रकार से राधिका जी को मनाते हैं, खुशामद करते हैं और राधिका जी रूठ जाते हैं और भगवान मनाते हैं। तो उनमें जो प्रेम है राधिका जी के मां वो एक अपार है, और उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो क्रिया है, उनका जो हाव भाव कटाक्ष है, वो केवल भगवान को आह्लादित करने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। भगवान इस बात को जानते हैं इनकी सारी क्रिया तुम्हारे को आह्लादित करने के लिए है, अपने लिए नहीं, तो इसको क्या गर्ज। गर्ज तो तुम्हारे को है, कोई भी जो आदमी है दाता को गर्ज कम होती है और ग्रहीता को अधिक होती है। तो यहाँ राधिका जी जो है वो तो दाता है, वो तो भगवान को आह्लाद देने वाली है। तो देने वाला जो होता है उसको गर्ज कम रहती है। हमारा भी प्रेम उनके माफ हो जावे तो हम भी भगवान से रूठ सकते हैं, और न बुलाने पर उपेक्षा करने के ऊपर भी भगवान रुक नहीं सकते। तो ये विशेष प्रेम की बात है। दूसरी एक बात बताई जाती है, लोकोक्ति है, कोई पुराणों में भी कहीं हुए तो उनको मालूम नहीं। एक समय के बीच के माँ गोपियां एकांत में बैठ करके भगवान के प्रेम की चर्चा कर रही थी, जिसमें भगवान के गुणों का विषय भी था और वे सब गुण भगवान के सम्मुख कहने में एक प्रकार संकोच होता था, और भगवान का जो प्रभाव है, भगवान का जो तत्व है, भगवान के रहस्य की जो बातें हैं, ये सब बातें एकांत के बीच के माँ भगवान की अनुपस्थिति के माँ गोपियां सो कर रही थी, और बाहर के बीच के माँ सुभद्रा देवी को बैठा दिया कि तुम यहाँ पहरेदार होकर के रहो, भगवान आवे तो आने मत, क्योंकि भगवान के आने से ये बातें रुक जाएगी, उनके सन्मुख करने के वहां संकोच होगा, तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां जो है भगवान को रोक दो। तो भगवान आए और भीतर जाने लगे तो रोक दिया गया कि महारानी राधिका जी का हुक्म है कि आवे तो भीतर मत आने दो। बोलो हमारे लिए भी मनाई है, बोलो आपके लिए खास करके मनाई, तो बोलो हमारी खबर तो जो ये आना चाहते हैं, तो बोलो जाने की मनाई है तो खबर देने की आवश्यकता है। बोलो तुम्हारी जो मालकिनी है उसके पास कम से कम हमारी खबर तो पहुंचा दो, तो खबर पहुंचाई जाती है, और वहां भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य प्रेम का ये विषय चल रहा है, तो पाछा उतरिए कहा जाता है कि नहीं अभी थोड़ी बार ठहरिए, हमारे यहाँ जो सत्संग हो रहा है उसमें विघ्न पड़ जाएगा आपके आने से। भगवान तो अंतर्यामी ठहरे सब जानते हैं, भगवान तो और खुश होते हैं कि इनके रहस्य की बात में समझ गया। आप ख्याल करके देखिए, हम लोग किसी एक महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं और उस दिन वो महापुरुष आ गया तो वो चर्चा रुक जाती, क्योंकि उनके सम्मुख हम नहीं कर सकते, किंतु उस महापुरुष को रोकने की भी हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उसको रोक दें। क्यों नहीं रोक सकते हैं कि एक प्रकार से मन में थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा भय होता है, हम आदर करना चाहते हैं, सत्कार करना चाहते हैं, आदर सत्कार के वहां बाधा आती है, तो एक प्रकार से रोक नहीं सकते। किंतु जहां अतंत प्रेम हो जाता है वहां तो एक समझो कि कथन मात्र का ही संकोच रहता है, वहां आदर या सत्कार या स्तुति प्रार्थना या संकोच या भय कुछ भी नहीं रहती, किंतु उस प्रकार का एक व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से गोपियां इकट्ठी होकर के जब बात कर रही है तो वास्तव में वहां कोई संकोच या भय या एक प्रकार से कुछ भी नहीं है, किंतु व्यवहार ऐसा हो रहा है कि उनके आने से उनके सामने करने के वहां हमको रुकना पड़ेगा, तो इसलिए वे बाहर में थोड़ी बार रहे। जब एक प्रकार से समय थोड़ा बीत गया तो फिर बुलाया जाता है कि अच्छा कह दो अब आ सकते, तो भगवान जाकर के देखते हैं कि सभी प्रेम के मां मुग्ध हैं, सभी आनंद के मां मुग्ध हैं, तो उनकी वो अलौकिक जो दशा है वो भगवान के गुण प्रभाव और तत्व रहस्य की बातों के ही प्रभाव से, तो भगवान का जो प्रभाव है और गुण और स्वभाव, गुणों के अंतर्गत सभी बातें आ जाती, प्रभाव भी एक प्रकार से गुणों का एक अंग बन जाता है और स्वभाव भी, किंतु अलग अलग जिस विभाग किया जावे तो भगवान का जो स्वरूप, भगवान का जो स्वभाव, भगवान के जो गुण और भगवान का प्रभाव, ये सब चीज अलग अलग हो जाती है। इसी प्रकार से थी बहुत जगह भगवान का जो तत्व और रहस्य दोनों मिलकर के एक ही चीज हो जाती है, और सूक्ष्म विचार करने से वो चीज दोनों अलग अलग हो जाती है। रहस्य उसको कहते हैं कि जो भगवान के विषय की छिपी हुई बात है, तत्व उसको कहते हैं कि भगवान का जो तात्विक वास्तविक जो स्वरूप है, भगवान के गुण प्रभाव प्रेम की तत्व की उनके विषय की बात उनके सामने, नहीं की जा सकती, तो ये एक प्रकार से थी भगवान का रहस्य हुआ। ये एक रहस्य की बात हुई कि जो भगवान के सन्मुख भगवान के गुण प्रभाव की बात करने में संकोच होता है, और ये तत्व की बात है कि भगवान संसार के बीच के मां निराकार सगुण निराकार रूप से किस प्रकार से है, सगुण साकार रूप से किस प्रकार से प्रकट होते हैं, निर्गुण निराकार रूप से किस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार का जो तात्विक जो विवेचन है, समझ है, वो परमात्मा के तत्व की बात है। भगवान के साथ में प्रेम का जो तत्व या रहस्य समझ जाता है, वो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, उसके प्राण जो है सो सड़पटाने लगते हैं, उसके विरह की व्याकुलता के बीच के वहां उसके प्राण सो नहीं रह सकते। वो समझता है कि परमात्मा जैसी चीज और श्रद्धा पर निर्भर कर रहे, और श्रद्धा अपने आप की अपने हाथ की चीज है, भगवान के मां श्रद्धा करने से विश्वास करने से भगवान मिले हैं और मिलते हैं मिल सकते हैं, उसकी कमी के कारण से थी मैं उससे वंचित हूं। तो भगवान जैसी चीज से मैं वंचित रहना कैसे बर्दाश्त कर सकूं? उस भगवान का जो प्रेम है, उस प्रेम के मर्म को जानता है, प्रेम के प्रभाव को जानता है, प्रेम के तत्व को जानता है, वो प्रेम का तत्व क्या है? जैसे भगवान राम हनुमान के मार्फत सीता के प्रति संदेश भेज रहे हैं कि हे सीते, तेरे और मेरे प्रेम का जो तत्व है वो जानता है मेरा मन, और वो है तुम्हारे पास। तो मन जो है ये प्रेम के तत्व को जानता है कि प्रेम क्या चीज है। तो प्रेम का तत्व है एक प्रकार से भगवान का जो प्रेम है उसका जो तत्व क्या है कि वो वास्तव के मां भगवान का स्वरूप ही है।